मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आज 23 नवंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी अपने अजीज दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं रवि शेखर धनबाद झारखंड से, गरिमा भांदुला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, पटेल वेनस रोहित कुमार अहमदाबाद से, विकास यादव बक्सर बिहार से, अनिल कुमार यादव रांची से, और रांची से ही हैं संगीता कुमारी, सपना प्रजापति ग्वालियर से और विकास कुमार गाजियाबाद से। तो रवि, गरिमा, वेनस, विकास, यहां मैं विकास यादव कह दूं, दो विकास हैं, विकास यादव, अनिल, संगीता, सपना और विकास कुमार, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, साथ ही जैसा कि मैं बीच बीच में आप सबको याद दिलाता रहता हूं, क्योंकि याद दिलाना मैं अपना धर्म समझता हूं, वो ये कि प्लीज इस डेली ऑडियो गाइडेंस की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखें। ऐसा इसलिए कि क्योंकि न मैं इसमें केवल आपसे सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में ही बातें करता हूं, बल्कि कहीं न कहीं इस क्लासेस की तैयारी के बारे में भी हम लोगों की बातचीत होती है, और समय समय पर आप लोगों को आवश्यक सूचनाएं और निर्देशन भी दिए जाते हैं। इसलिए प्लीज, चूंकि आप लोगों ने मन बनाया है सिविल सर्विस देने का, और इस प्रोसेस में आपने मन बनाया है एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस अटेंड करने का, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी ये कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी बनती है कि आप इस डेली ऑडियो के कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलें। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है, और अब मैं आता हूं अपने लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। मित्रों, आज सुबह मैं वैसे ही जब टहल रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में कौन थी, मैं ऐसे ही कुछ लोगों को जाते हुए देख रहा था और वो बड़े खतरनाक तरीके से अपनी बाइक चला रहे थे, तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई कि रोज अखबारों में न केवल हम ही पढ़ते हैं, बल्कि ये जो खतरनाक तरीके से जो स्टूडेंट बाइक चला रहे हैं ये भी पढ़ते हैं कि इस बाइक का एक्सीडेंट यहां हो गया और उस लड़के की डेथ हो गई और वो साइड के डिवाइडर से टकरा गई और फलाना फलाना हो गया। ये रोज इस तरीके की खबरें दुर्भाग्य से अखबार में एकाध न तो मिल ही जाती है। और फिर मुझे लगा कि ये सब खबरें पढ़ने के बाद भी ये जो नौजवान साथी हैं ये क्यों इस तरीके से खतरनाक रूप में बाइक चला रहे हैं, बिल्कुल हिचकोले लेते हुए अचानक स्पीड बढ़ा देना, फिर एकदम अचानक स्पीड कम कर देना, खूब तेजी से टर्न लेना, पता नहीं जितने भी वो करिश्मे दिखा सकते हैं, करतूतें दिखा सकते हैं, वो सब उस पर करने की कोशिश वो करते हैं। तो मैं सोचने लगा कि आफ्टर ऑल इसको क्या मिलता होगा इससे। फिर मेरा दिमाग दोस्तों कुछ इधर गया कि क्या जोखिम उठाने में भी कुछ आनंद है, कुछ प्लेजर मिल सकता है। जब इस पर सोचने लगा तो फिर मेरा दिमाग एक दूसरे दिशा में गया कि केवल यही नहीं, बल्कि जोखिम वाले तो कुछ खेल ही होते हैं, और ऐसे खेल होते हैं जिसके बदले में आपको कोई खास विशेष मिलता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एवरेस्ट पर चढ़ना, जब आप एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप चढ़ेंगे और चढ़कर वापस आ जाएंगे, आस लोकल अखबारों में एक आध जगह पर छोटी सी जगह पर नाम आ जाएगा, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। यह बात अलग है कि जब पहली बार कोई एवरेस्ट पर चढ़ा तो वो एक इतिहास पुरुष बन गया, अब तो ऐसी संभावनाएं भी नहीं रह गई। स्पोर्ट्स के आप बहुत से गेम देखिए कि नाव पर बैठे हुए हैं, रबर की नाव पर, और उछलती हुई तरंगों के बीच वो जा रहे हैं, और नाव इतने खतरनाक तरीके से उछल रही है कि लगता है कि अब पलटी कि तब पलटी, और वो आनंद ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। जंपिंग, बहुत से ऐसे खेल होते हैं जिनमें साफ तौर पर जीवन का जोखिम इन्वॉल्व होता है और बदले में कुछ विशेष मिलता नहीं है। तो मैं सोचने लगा दोस्तों कि फिर ये जोखिम लेने का मतलब क्या है। कल एकादशी थी, देव उठनी, ग्यारस जिसको कहते हैं, लोग पटाखे जला रहे छोड़ रहे थे। इससे ठीक पहले दिवाली पर और दिवाली के कुछ दिनों बाद तक लगातार पटाखे छोड़ते चले जा रहे हैं। मैंने देखा कि आपने देखा क्या, आपने आप ऐसा करते भी होंगे कि जब पटाखा जला दिया गया, एक बम फूटने वाला है, धीरे धीरे उसके ऊपर की जो पतली सी जो डंडी है वो जल रही है, सुलग रही है, सुर 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 से उससे प्रकाश निकल रहा है, और जब वो जल करके खत्म हो जाती है तब फिर अचानक वो बम तक वो आग पहुंचती और धमाका हो जाता है। और इससे पहले आप उसे देखते रहते हैं, और मजेदार बात है कि अपने कानों को उंगलियों से बंद भी कर लेते हैं, यानी कि आप उसे उस रूप में सुनना नहीं चाह रहे हैं, और धड़ाम से आवाज आती है और आप खुश हो जाते हैं। आप डर भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, एक ही बार ऐसा नहीं करते, फिर तुरंत उसी श्रेणी का दूसरा बम निकालते हैं और फिर उस पर आग लगाते हैं, और हर कोई यही कर रहा है। तो वहां डर में आनंद लिया जा रहा है। तो मित्र, मैं सोचने लगा कि सच में ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो एक बात मेरे दिमाग में जो आई है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लोग अगर कर रहे हैं तो व्यर्थ में कर रहे होंगे। इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत गहरा कारण होगा, कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ होगा। यह बात अलग है कि जो इसको कर रहा है और इससे इसका लुत्फ उठा रहा है वो इस राज को कितना जानता है, जानता भी है या नहीं भी जानता है, ये अलग बात है, लेकिन वो मजे तो ले रहा है। तो मित्रों, मुझे एक बात सूझी, वो ये कि जब हम किसी भी खतरनाक काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ रहा हूं या किसी रॉक क्लाइंबिंग कर रहा हूं, चट्टान पर चढ़ रहा हूं, राइट, रस्सी पकड़े हुए हूं, चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे पैर की जो उंगलियां हैं वो चट्टान को पकड़ संभालते हुए मुझे ऊपर की ओर ले जा रही हैं, राइट। और ये जोखिम का काम है, क्योंकि अगर मैं जरा सा भी मुझसे चूक हुई तो फिर सीधे मैं ऐसे नीचे खड्ड में गिरूंगा कि फिर मेरी हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं, एवरेस्ट पर चढ़ रहा हूं, इसको कर रहा हूं। तो मित्रों, मुझे यह लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम कोई बहुत बड़े जोखिम का काम करते हैं या जितने बड़े जोखिम का काम करते हैं, जितना उसमें हमारे जीवन का रिस्क इन्वॉल्व होता है, हम उतने ही ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये रस्सी जरा सी भी हाथ से छूटी तो जिंदगी खत्म। एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, जरा सा भी पैर फिसला कि जिंदगी फिनिश्ड। तो ऐसे समय में जब जिंदगी को चुनौती मिल रही है, हमारे अस्तित्व के सामने ही एक संकट खड़ा हो गया है, तब जो हमारे अलर्ट की सिचुएशन होती है, डेंसिटी होती है, वह बहुत जबरदस्त होती है। हम बिल्कुल एकदम उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, और हमारा जो मस्तिष्क है अब न तो पास्ट के बारे में सोचता है और न ही फ्यूचर के बारे में सोचता है, कुछ नहीं सोचता। और अगर जरा भी वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर पक्का है कि उसके साथ वह दुर्घटना घटेगी ही घटेगी जिससे वो डर रहा था, पक्का है वो घट जाएगी। अक्सर आपने ऐसा महसूस भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जोखिम के क्षणों में, मोमेंट में, पलों में हमारी पूरी की पूरी चेतना वर्तमान पर केंद्रित हो जाती है, प्रेजेंट जिसे हम कहेंगे, उस पर वो सिमट जाती है। उसकी डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो जरा भी उससे विचलित नहीं होता। वह, इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह एकदम वर्तमान में जीने लगता है। और मित्रों, जो वर्तमान में जीने का जो सुख है, जो आनंद है, जो स्वाद है, या कहिए हमारी चेतना को उन वर्तमान के क्षणों में डुबकी लगाने से जो स्वाद मिलता है, जो टेस्ट आता है, वह शायद अद्भुत होता है। शायद वो इतना विलक्षण होता है कि उसके लिए आदमी को अपने जान की बाजी तक लगा देने में अफसोस नहीं होता है, डरता भी नहीं है। डर के क्षणों में भी ऐसे ही होता है। आप देखिए कि अगर सामने बम फूट रहा है तो हम करेंगे क्या, डर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बम फूट रहा है और उससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, और हमारा पूरा जीवन, पूरी हमारा जो समय का जो प्रवाह है वो इस एक क्षण पर केंद्रित हो गया है, और वह क्षण है बम के फूटने का क्षण, पटाखा के छूटने का क्षण। और इस क्षण को हमारा जो चेतन मन है, बल्कि चेतन मन नहीं कहना चाहिए, हमारा जो अचेतन मन है और हमारा जो अवचेतन मन है, वो इस कदर एक्सेप्ट करता है कि वो अद्भुत होता है, वो शायद अवर्णनीय है, शायद उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और मित्रों, मुझे लगता है कि अगर ये जरा भी सच है, और सच पूछे तो मुझे कम से कम गलत तो नहीं लगता, तो शायद यही वह तत्व है जो हमें हमारे आम जीवन में भी प्लेजर दिला सकता है, आनंद दिला सकता है। खेल के क्षणों में यही तो होता है कि हम पूरी तरह से, चूंकि हार और जीत का मामला है, तो हम खेल को खेलने में डूबे रहते हैं और उसका हमें आनंद मिलता है। तो मित्र, मुझे लगता है कि क्या सच में इसी सिद्धांत को, इसी फिलॉसफी को हम अपनी पढ़ाई पर लागू नहीं कर सकते? अभी जो मेरे स्टूडेंट्स आए थे थर्ड बैच के, उनको मैंने एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला बताया था कि मित्रों, आप सब सिविल सर्विस में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिविल सर्विस बेसिकली नौकरी से हटकर के और क्या है, जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। और मैंने उनको ढेर सारी प्रिविलेजेस बताएं कि सिविल सर्विस से आपको ये चीजें भी मिलेंगी जो न तो किसी कागज पर लिखी हुई होती है और न शायद आपको मालूम भी हो, जब तक कि आप करेंगे नहीं शायद आपको मालूम नहीं हो सकेगा। और यह बात मैंने स्पेशली इसलिए उनको बताई थी, मैंने कहा कि ताकि सिविल सर्विस के प्रति आपके मन में थोड़ा लालच का भाव पैदा हो जाए। और मुझे लगता है दोस्तों कि थोड़ा बहुत लालच शायद कहीं ना कहीं फायदेमंद तो होता है, क्योंकि वो जो लालच होता है वो फिर हमें उससे जोड़ देता है, हमें उन पलों का स्वाद लेने का एक तरह से की लत लगा देता है जिन पलों में हम कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप इस पढ़ाई का आनंद लेने लगेंगे, रस लेने लगेंगे, तो आप देखेंगे फिर आपको यह पढ़ाई बोझ लगनी बंद हो जाएगी। जब आदमी उतने बड़े बड़े जोखिम उठा सकता है तो पढ़ाई करने में तो कोई जोखिम ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो ऐसी चीज है कि जो आपको ज्ञान मिला है वो ताउम्र आपके पास रहेगा। अभी मित्रों, करीब तीन दिन पहले, शायद फ्राइडे की बात होगी, मेरे पास एक थर्ड बैच के ही स्टूडेंट का फोन आया था, विवेक, जो दिल्ली में रहते हैं और मुखर्जी नगर में ही रहते हैं। उन्होंने एक विचित्र सी बात बताई, उन्होंने जो मेरी जानकारी में नहीं थी, उन्होंने बताया कि सर, जब 15 दिन की क्लास खत्म हो गई और जब उसका फेयरवेल हो गया, एक तरह से एड्रेस हो गया फेयरवेल एड्रेस, तो जब हम लोग अपने कमरे पर लौट करके आए तो हम लोग जो तीन चार दोस्त थे आपस में, वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे कि अरे, हमारा ये 15 दिन खत्म हो गया, अब हम करेंगे क्या, जाएंगे कहां। मतलब उनको 15 दिनों का जो ये स्वाद मिला, शायद उसके बिछुड़ने का उनको दुख था। तो मित्रों, 15 दिनों तक यहां हो क्या रहा था? कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ पढ़ाई हो रही थी। तो अब सबसे बड़ी बात जो है, जो उन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी, वो ये हुई कि वो उस पढ़ाई का आनंद ले रहे थे। रोज 6-6 6:30 कभी कभी 7-7.5 घंटे तक वो लगातार हॉल में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, आवाज नहीं आ रही है, और पूरी केंद्रीयता के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जरा भी मिस करने की वहां गुंजाइश नहीं रहती है। और मैंने देखा कि क्लास शुरू होने के एक मिनट पहले सब क्लास में मौजूद होते थे और क्लास छूटने के बाद ही बाहर निकल करके जाते थे। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि वो पूरी तरह से अपने वर्तमान में होते थे, वहां जो कुछ भी बताया जा रहा है वो उसका रस लेते थे, वो उसको बोझ नहीं समझते थे, उसका आनंद लेते थे। यानी कि वो पूरी तरह से उस समय में डूबे हुए थे, वो उन क्षणों को एंजॉय कर रहे थे। और स्वाभाविक है मित्रों, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं कोई वो थोड़ी हूं, आप ही जैसा ही हूं, और मैं ही क्यों ना हूं, अगर कोई इस तरह का एंजॉयमेंट मिल रहा है और ऐसा समय आए जब लगे कि अब ये मिलना बंद हो जाएगा, तो पछतावा तो होगा ही, दुख तो होगा ही कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो मित्रों, एक जोखिम के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसको आधार बनाकर मैंने आप लोगों से लाइफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं, और मुझे लगता है कि यदि आप लोगों को इस पर थोड़ा सा भी मेरी इन बातों पर भरोसा हो तो प्लीज एक बार आजमा कर देखने में हर्ज क्या है, करके देखिए, शायद बात बन ही जाए। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स AIR न्यूज पर। कल एक दो महत्वपूर्ण खबरें थी, लेकिन जितनी भी खबरें थी मैं कहना चाहूंगा कि वो ज्यादातर खबरें खासकर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई थी, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी चूंकि इस तरीके से जुड़ी हुई थी जिनका हमारे नेबर कंट्रीज से संबंध है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध है या विश्व की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनमें से किसी एक समस्या से वो संबंधित है, इसलिए वो जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, एक जो खबर थी, जो बड़ी खबर थी और मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के लिहाज से वो महत्वपूर्ण खबर भी है, वो है आतंकवाद के बारे में। भारत और चीन ने जो एक संयुक्त वक्तव्य जो इशू किया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि दोनों देशों ने आतंकवाद के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने महत्वपूर्ण क्यों कहा, महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा, एक तो भारत और चीन, आपको मालूम ही है कि एशिया के दो बड़े देश हैं और न केवल अब तो एशिया के ही दो बड़े देश हैं बल्कि वो विश्व के देशों में अब प्रमुख हो गए हैं, प्रमुखों में से दो हो गए हैं। और भारत और चीन के बीच अलग अलग तरीके के विवाद चलते रहते हैं, जैसे इसी न्यूज में आपने देखा कि दक्षिण चीन सागर को लेकर के एक जबरदस्त विवाद है, आर्थिक गलियारे को लेकर के भी विवाद है, ईस्ट साइड में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें कहीं ना कहीं सीमाओं को लेकर के भी विवाद है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन ने बांध बनाना शुरू कर दिया है अपने एरिया में, उसने उसको लेकर के भी आपत्तियां हैं। तो इस तरह के विवाद के काफी बिंदु हैं और स्वाभाविक है कि जब विवाद के ऐसे बिंदु हों उसमें अगर कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होता है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो एक अच्छी बात होती है, तो यह एक अच्छी बात है। और अच्छी बात यह इस मायने में भी है कि इसका जो संबंध है, इस ज्वाइंट स्टेटमेंट का संबंध है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा उसका जो मेन पर्पज है वो है किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को, आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। न्यूज में आपने सुना कि जिन जिन क्षेत्रों में ये सूचनाओं के आदान प्रदान करेंगे उसमें आपने देखा कि मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर संबंधी अधिकार, हथियारों की अगर कहीं तस्करी हो रही है तो उनके बारे में अगर कोई सूचना मिलती है, तो इसी तरह से अगर किसी विमान का अपहरण हो गया है, किसी कोई बंधक बना लिए गए हैं, तो इस तरीके के जितने भी अपराध होंगे उनके बारे में दोनों देश एक दूसरे को सूचनाएं मुहैया कराएंगे अगर उनके पास कुछ ऐसा होगा तो। मित्रों, इसके पीछे एक और भी कारण है। आप ये तो जानते ही हैं कि भारत लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित है, चाहे कोई भी कर रहा हो, कैसे भी हो रही हो, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुंबई का हमला देख, मुंबई पर शहर पर किया गया हमला पार्लियामेंट में देख लीजिए, और भी जो दूसरे होते रहते हैं, पंजाब के बॉर्डर पर, पंजाब पर अभी कुछ महीने पहले हुआ था, तो इस तरह के लगातार आतंकवादी गतिविधियां भारत में हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये फैलते फैलते कहां जा रहा है। चीन में भी इस तरह की गतिविधियां हुई, कुछ ही समय पहले चीन में गतिविधियां हुई, और जब चीन में गतिविधियां हुई तो शायद चीन चौंका होगा। और फिर आप देख रहे हैं कि पेरिस और फ्रांस में हो गया है, ब्रुसेल्स में तो अभी आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, एक तरह से वहां का जो जीवन है वो रुक सा ही गया है इस भय से कि कोई आतंकवादी गतिविधियां होने जा रही हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि इस बीच में माली में भी गतिविधियां हुई हैं, बंधक बनाए गए हैं, कितने लोग मार डाले गए हैं, यानी कि वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका में भी अब ये चीजें फैल रही हैं। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी के साथ फैलती चली जा रही हैं। और नो डाउट कि ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया इसका मुकाबला करने के लिए एक होने की कोशिश कर रही है, भारत और चीन को तो स्वाभाविक तौर पर एक होना ही चाहिए और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, दोनों ही देशों का बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस विश्व आतंकवाद को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है और उसका टाइटल ही उन्होंने दिया स्टैंड यूनाइटेड। इसके बाद लिखा है फ्रॉम पेरिस टू बमेको, ये जो बमेको है ये माली की जो राजधानी है बमेको है जहां यह घटना हुई है, फाइटिंग टेरर रिक्वायर्स अनक्वालिफाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि इस तरह के टेरर्स का मुकाबला करने के लिए अब पूरी की पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है। उसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है दोस्तों, वो ये है कि जो अरब में जो वसंत क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत आपको मालूम है कि ट्यूनीशिया से हुई थी, जिस पर अभी 2015 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था, और दूसरे देश ट्यूनीशिया के बाद फिर वो फैलता चला गया, लीबिया वगैरह में हुआ, इजिप्ट में हुआ और दूसरे देशों में जो लगातार एक जबरदस्त उथल पुथल हुई। तो इसी दौरान जो इस्लामिक ग्रुप थे, अफ्रीका के जो इस्लामिक ग्रुप थे, उनको पनपने का मौका मिल गया। चलिए वो पनपने लगे धीरे धीरे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो सबसे बड़ी चिंता की बात है अब जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अब जहां ये छोटे 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 इस्लामिक ग्रुप हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होने लगे हैं। ये एक सबसे खतरनाक बात है और एक बहुत गंभीर चुनौती भी है। तो उन्होंने कहा कि जब ये आतंकवादी गुट यूनाइट हो सकते हैं तो उनसे जो त्रस्त राष्ट्र है और ये जो दुनिया है, अब तो कोई एक राष्ट्र रह ही नहीं गया है त्रस्त होने में। अगर वो अभी तक बचा हुआ है तो सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि उधर अभी निगाहें उठी नहीं है, कभी भी वो इसकी चपेट में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि ये जो चुनौती है, इस चुनौती का मुकाबला सारे मतभेदों को भुला करके और इकट्ठे होकर किया जाए। इसी संदर्भ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत और चीन के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट की भी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि चीन और पाकिस्तान के संबंध बड़े निकट के होते जा रहे हैं, बहुत घनिष्ठ होते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि ग्वादर बंदरगाह में इसने अभी 2000 एकड़ जमीन भी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान ने चीन को सौंपी है कि वो अपना वहां डेवलप कर सके। और इसको इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने ऑडियो में पिछले सप्ताह की भी थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ओपिनियन है कि चीन को सबसे पहले पाकिस्तान को समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के कैंप हैं और इस बात का खुलासा कई मंचों पर हो चुका है। तो अगर उसको सच में सिक्योरिटी की चिंता है, इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चिंता है और आतंकवाद के खिलाफ वो खड़ा होना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे पाकिस्तान के साथ जो उसके अपने संबंध हैं, जो पाकिस्तान इस तरह के आतंकवादियों की शरण स्थली बना हुआ है, उससे अपने संबंधों को करेक्ट करें और तब जाकर के फिर सही मायने में ये दोनों देश इसके खिलाफ उठकर खड़े होने लायक होंगे। तो मित्रों, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल कमेंट है, ये एडिटोरियल कमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप देख लेंगे। इंग्लिश में है और इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोस्तों, एक दूसरी खबर थी, वो आपको मैं चलते चलते उसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा भी कर दी है कि जो माली जो एक देश है और खासकर ये वेस्ट अफ्रीका का राष्ट्र है। ये बात मैं जानबूझ करके आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अगर 2015 का जनरल स्टडीज का पेपर देखा हो, फर्स्ट पेपर, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि ये पर्टिकुलर देश कहां है या ये पर्टिकुलर पहाड़ी गोलान हाइट कहां है, किस एरिया में है, मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट मिडिल एशिया में है, वेस्ट एशिया में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली उसके पीछे पूछे जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, भले उस समय हमें वह कारण ध्यान में ना आए। तो मैं आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा कि चूंकि अफ्रीका में ये घटना घटी है और इसको लेकर के अभी काफी चर्चा भी है और एक ऐसे दौर में घटी है कि कुछ दिनों पहले ही पेरिस में घटना घटी थी, तो ये स्थान अब चर्चा में है, माली, और उस जो वेस्ट अफ्रीका में है, इसकी राजधानी है बमाको और इसका बहुत सा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में आता है। आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मेरी समझ से इसी से बात बन जाएगी और बेहतर होगा यदि आप इस स्थान को वर्ल्ड मैप में जाकर के लोकेट कर सकें। आपकी लोकेशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है और वो है वेस्ट अफ्रीका। फ्रेंड्स, इसी क्रम में एक और खबर है और खासकर भारत आसियान का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो हुआ है, आपको मालूम है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए भी हैं। अब आप देखें कि आपको एक मौका है कि जो एशियान कंट्रीज हैं, जिसे हम आसियान देश भी कहते हैं, उसके बारे में तैयारी कर सकें। और आपको मित्रों तैयारी करनी भी चाहिए। देखिए, आप हर की बराबर स्तर पर तैयारी नहीं कर सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। और सच है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपकी जो तैयारी करने की प्रायोरिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। किस पर ज्यादा तैयारी करनी है, किस पर एक मिडिल लेवल की तैयारी करनी है, किस पर एक चलताऊ तरीके से केवल एक सरसरी निगाह मार लेनी है और कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल छोड़ देना ही बेहतर होगा। चलिए, जिन्हें हमने बिल्कुल छोड़ दिया या सरसरी निगाह से हमने केवल देखा है, हो सकता है कि वो एग्जाम में पूछ भी लिए जाएं, लेकिन उसके लिए फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिन्हें बहुत अच्छे से तैयार किया है वो भी तो पूछे गए हैं। तो यहां की भरपाई हमारे वहां हो जाएगी, क्योंकि उन पर हमारी कमांड अच्छी है और उन पर हम ज्यादा स्कोर कर भी लेंगे। तो इस पॉलिसी को आपको एडॉप्ट करना चाहिए, और उसी पॉलिसी के तहत मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आसियान देश हैं, ये इनफैक्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। खासकर जब से हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी विदेश नीति में आपको दो तीन बड़े महत्वपूर्ण अंतर दिखाई दे रहे हैं। पहली तो बात है कि पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत घनिष्ठ बनाया जाए और बराबर के संबंध बनाते हुए उनकी मदद की जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जिसमें भारत ने काफी सफलताएं हासिल कर ली हैं, जैसे कि सैटेलाइट की बात थी। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देशों को सैटेलाइट छोड़ने की सुविधाएं देंगे और उनको अन्य भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इस तरह की चीजें। और दूसरी बात कि लुक ईस्ट की पॉलिसी को अब उन्होंने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब हम केवल उधर देखेंगे ही नहीं बल्कि अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल रखेंगे और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे संबंध उनसे बेहतर हों। तो मित्रों, ऐसी दृष्टि में या कह लीजिए कि इस आधार पर जो एशियान देश हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण देश बन जाते हैं। अब आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे? डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप किताब उठाएं और आसियान देशों के बारे में सबसे पहले पढ़ें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो 12th की किताब है, समकालीन विश्व राजनीति, उसमें आपको आसियान पर एक छोटा सा चैप्टर मिल जाएगा। उससे आप अपनी बेसिक्स तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उससे भी उसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप मैप उठाएं, एटलस देखें, और एटलस में साउथ ईस्ट एशिया के पेज को खोलें और जानने की कोशिश करें कि यहां कौन कौन से देश हैं। सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले एशिया के कॉन्टिनेंट को देखेंगे। एशिया के कॉन्टिनेंट में जाने के बाद आप उसके ईस्ट वाले हिस्से पर जाएंगे और इसके बाद ट्रेवल कर जाएंगे साउथ के हिस्से में, और वहां फिर आप कंट्रीज जो हैं उनको लोकेट करें। और ऐसा आप कैसे करेंगे, मैंने क्लासेस में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। आप देखेंगे कि आप साउथ ईस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे, और जब आप साउथ ईस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे तब वहां कंट्रीज को देखने की कोशिश कीजिए कि वहां कौन कौन से कंट्रीज हैं। आपको वहां अगर आप ईस्ट से देखना शुरू करेंगे या आपने राइट साइड से देखना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा पूरी बाउंड्री पर एक लंबा सा देश जो वियतनाम है। आप देखेंगे कि किस तरह से एक केचुए के आकार का पूरा लंबा सा देश, जिसमें साउथ और नॉर्थ में तो बहुत लंबाई है लेकिन चौड़ाई बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई पतली गली होती है, उस तरह का वियतनाम पूरा का पूरा फैला हुआ है, साउथ चाइना सी को घेरे हुए, दक्षिण चाइना महासागर को घेरे हुए। दोस्तों, होता यह है कि जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो हमारी केवल एक ही तैयारी नहीं होती, हमारी एक साथ बहुत सी तैयारियां होती हैं, और सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए आज इसी तरह की तैयारी की जरूरत है। आप इसको देखते समय याद कर सकते हैं कि लगभग 6 महीने 8 महीने पहले जब हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे वियतनाम, तो वहां भारत और वियतनाम के बीच में वियतनाम के समुद्री क्षेत्रों में तेल निकालने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका साउथ चाइना ने विरोध भी किया था। तो जब आप इसको इस रूप में देखेंगे तो आपके दिमाग में वो घटना याद आ जाएगी, और ऐसी घटनाएं आपको याद आनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और अगर आपको सिविल सर्विस मेंस के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो ऐसी ही घटनाओं के संकलन से आप कंटेंट जुटाकर अपनी एनालिसिस पूरी कर सकेंगे, अदरवाइज चीजें अधूरी रह जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि जब आप हम इसको अभी राइट साइड से देखना शुरू कर रहे हैं, मतलब हम अपने हाथ की दिशा की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ईस्ट साइड से देखना कर रहे हैं, ठीक इसके बाद उसी से सटा हुआ आपको नॉर्थ में ऊपर की तरफ लाओस मिल जाएगा और उसके साउथ में कंबोडिया मिल जाएगा, और लाओस और कंबोडिया को फिर वेस्ट में उसके, या कह लीजिए कि हमारे लेफ्ट साइड में घेरा हुआ पूरा का पूरा थाईलैंड मिल जाएगा, पूरा का पूरा थाईलैंड, और थाईलैंड के ऊपरी हिस्से पर, नॉर्थ हिस्से पर आप कह लीजिए कि आपको म्यांमार मिल जाएगा। तो इस तरीके से अनचाहे ही अनजाने ही बड़े नेचुरल तरीके से आपको पता लग जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, और ये इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, जो आपके पढ़ने की सबसे अच्छी वैज्ञानिक तकनीक होती है। और दोस्तों इसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे या किताब पढ़ने के बाद मैप देखेंगे तो आपको कुछ फैक्ट्स जानने को मिल जाएंगे और आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं, बाकी तो आपको अपने उत्तर में सारी के सारी समकालीन जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1967 में कंबोडिया डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करके पांच देशों ने, खासकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना की थी, जिसे हम कहते हैं आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये उसका पूरा नाम है। इसके बाद इसमें पांच और देश शामिल हुए और इस तरीके से अब टोटल इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 देश हैं। और इन 10 देशों को फिर से आप मैप पर लोकेट करने की कोशिश कीजिए, उसमें है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश मैप पर देखने के बाद आपको रट जाएंगे, आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। इनका जो सचिवालय है आसियान देशों का वह है जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया में। टोटल दुनिया के 8.8% पॉपुलेशन यहां रहती है और इनका जो मेन पर्पस है वो है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, आपस में अपने देश के आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और साथ ही साथ समाज का विकास करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को एनरिच करना और अपने क्षेत्र की, जो पूरे का पूरा उनका क्षेत्र है, वहां शांति और स्थापित करने की लगातार कोशिश करते रहना, जो एक सामान्यतया ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। और इस रूप में आप कह सकते हैं कि जो आसियान है वो बेसिकली एक तरह का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल, जैसा कि मैंने कहा, पीस एंड स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो पॉलिटिकल होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात हो रही है वो उसका है इकोनॉमिक, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरीके से मित्रों आपका एशिया आसियान पर एक बार तैयारी हो जाएगी और इसमें आपको मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, लेकिन इतना समय देना मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो एक छोटी सी खबर थी दोस्तों, आपको एक जेहन में थोड़ी सी रहना चाहिए कि भारत एशिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जीत चुका है। हालांकि न्यूज में तो यह था कि फाइनल मैच होना है, लेकिन आज जब हम बातें कर रहे हैं मैच हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, एशियन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। मित्रों खबरों में इतना ही था, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर का के बारे में डिस्कस करने के लिए अब ज्यादा वक्त है भी नहीं और वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज क्लिपिंग्स भी नहीं है। जो 3-4 न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और मित्रों इसी में एक रविवार डाइजेस्ट मैगजीन मेरे पास आई थी नवंबर महीने की, उसमें खासकर अभी जो वेस्ट और मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और खासकर विश्व आतंकवाद की, उसको लेकर के मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला, तो आज मैं आपको वह आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो मेल का चरण है। बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनमें से कुछ के नाम हैं, आकांक्षा नामदेव छतरपुर मध्य प्रदेश से, ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, अजय द्विवेदी दिल्ली से और अंकित राज बेगूसराय बिहार से। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।